के एक बार श्रील प्रभुपाद वृंदावन में थे, तो उस समय प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को पूछा कि सारे ग्रंथों का अध्ययन करके आपने कृष्ण से श्रेष्ठ कोई है ये आपको पता चला है पुस्तकों का अध्ययन करके? तो सारे भक्त चुप थे, लेकिन फिर प्रभुपाद ने कहा ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद एक व्यक्ति श्रेष्ठ है ये पता चल जाना चाहिए व्यक्ति को। वैसे प्रभुपाद के ग्रंथों में तो एक ही व्यक्ति श्रेष्ठ महसूस होता है, वो कौन है? कृष्ण। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। हाँ, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ के व्यक्ति फिक्स हो जाता है इसमें। लेकिन प्रभुपाद ने जब सबसे पूछा तो सारे भक्त बिल्कुल ही शांत थे, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तो प्रभुपाद ने कहा मैं बताता हूँ। प्रभुपाद ने कहा ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात एक चीज पता चलती है या पता चल जानी चाहिए कि कृष्ण से भी कोई श्रेष्ठ है, और वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो सारे भक्त ऐसे चकित हो गए कि अच्छा कृष्ण से भी कोई श्रेष्ठ है, तो लेकिन कैसे श्रेष्ठ है? आउट ऑफ लव, प्रेम के कारण। तो ऐसा श्रीमती राधा रानी का सर्वोच्च स्थान है, और श्रीमती राधा रानी का आश्रय लिए बिना कोई व्यक्ति कृष्ण को अप्रोच नहीं कर सकता, या कृष्ण प्राप्ति उसके लिए असंभव है। इसलिए श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी आप देखोगे तो प्रभुपाद बहुत छोटे से बालक थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद के घर में उनके पिताजी कई सारे साधुओं को बुलाते थे और बुलाकर कहते थे कि आप मेरे पुत्र को एक आशीर्वाद दो। कौन सा आशीर्वाद दो? कौन सा आशीर्वाद? राधा रानी का भक्त बने, क्योंकि यहाँ ब्रज में दो ग्रुप है, दो पार्टियां हैं, दो दल है। घर में भी होता है माँ की पार्टी है, दूसरी कौन सी? पिता की पार्टी। बच्चे कुछ माँ की पार्टी में रहते हैं, कुछ बच्चे पिताजी की पार्टी में रहते हैं। तो वैसे ही ब्रज में दो दल है, एक है श्रीमती राधा रानी का दल और दूसरा दल किसका है? कृष्ण का है। तो हमें चूज करना है कि हमें कौन से दल में रहना है, कौन से दल में हमारा सर्वोच्च लाभ है। तो ये जो हमारा संप्रदाय है मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जिसमें चैतन्य महाप्रभु आए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जितने भी आचार्य आए हैं इस संप्रदाय में, वो एक उसमें रहते थे, एक दल में होते थे। कौन से दल में होते थे? श्रीमती राधा रानी के दल में। और राधा रानी के दल में आप हो तो आप सेफ हो, क्योंकि राधा रानी के समान अनुकंपा वाली या दया वाली संसार में और कोई नहीं है। इसलिए राधा रानी कौन है इसको यदि समझना है तत्व से यदि देखे तो श्रीमती राधा रानी भगवान की अल्हादनी शक्ति है। कौन सी शक्ति है? अल्हादनी। अल्हादनी में आनंद देने वाली। तो जिस भक्त के हृदय में भगवान की शक्ति का थोड़ा प्रवेश हो जाता है उसको भगवत भक्ति प्राप्त होती है, और उसका हृदय दिव्य आह्लाद या आनंद से भर उठता है। और दूसरे प्रकार से राधा रानी को यदि समझे कि राधा रानी है कौन, राधा रानी कौन है? कृष्ण के अनुकंपा की मूर्तिमान स्वरूप है। क्या है? कृष्ण के अनुकंपा की मूर्तिमान स्वरूप, मतलब भगवान की जब कृपा है अनुकंपा जब साक्षात कोई स्वरूप धारण करती है तो वो श्रीमती राधा रानी है, और इतनी दयावान है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए देखो श्रीमती राधा रानी यहाँ बरसाना में निवास करते थे, तो एक बार नंदगांव जाती है, और नंदगांव जब श्रीमती राधा रानी गए और सुबह सुबह देखा, क्या देखा उन्होंने कि वहां कृष्णा नंद के जो लाला है और नंद महाराज सुबह उठ के सब लोगों को दान दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों को दान दे रहे थे जिनके पास क्या था? पात्र था। और जिसके पास पात्र नहीं था उनको लाइन से हटा देते थे कि चलो निकलो अभी आपके पास पात्र होना चाहिए। तो ये राधा रानी देख रहे थे, उनको तो एक अच्छा लगा कि ये सब दान दे रहे हैं कृष्ण और नंद महाराज, लेकिन उनको ही दे रहे हैं जिनके पास पात्र है, और जिनके पास पात्र नहीं देने के लिए उनको नहीं दे रहे थे, हटा रहे थे। तो राधा रानी नंदगांव से बहुत दुखी होकर आ गए बरसाना और रोने लगे। आकर वो अपने पिता वृषभानंद महाराज से कहते कि कैसे वो नंद महाराज और नंद के लाला कृष्ण है, वो उन्हीं लोगों को देते हैं दान जिनके पास क्या हो, पात्र हो। तो ऐसे कहते मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उनका हृदय बिल्कुल दुखी हो गया था। कहते कि आप उनको बताओ कि उनका जो दान है या कृपा किसको मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। तो राधा रानी स्वयं जाती है वहां अपने पिता के साथ, और वहां जाकर भगवान ये नंद महाराज और कृष्ण से कहती है। हाँ, तो इस प्रकार से तब से भगवान भी क्या करने लगे, भगवान के सोचने पड़े कि राधा रानी की इतनी दया है कि जिसके पास पात्र हो या नहीं भी हो वो भी उनकी कृपा को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये जो मूड है ना दया की भावना का, ये जो हृदय है ये श्रीमती राधा रानी का है। इसलिए कृष्ण जब आते हैं यहाँ बरसाना क्यों आते हैं कृष्ण नंदगांव से, क्योंकि ब्रज में एक ही रत्न है, ब्रज में रत्न राधिका गोरी रे। क्या बोलते हैं यहाँ ब्रज में रत्न राधिका गोरी रे, कि ब्रज में एक ही रत्न है। हाँ, जैसे व्यक्ति अपना धन आभूषण तिजोरी में रखता है, उसी प्रकार में ब्रज में एक आभूषण है, एक रत्न है, वह श्रीमती राधिका। तो ये मूल्यवान रत्न है तो उसके लिए चोर भी होना चाहिए, जो चुरा है तो वो चोर कौन है, कृष्ण है। इसलिए अष्टकम लिखा हमारे आचार्य ने, चोराग्रगण्य अष्टकम, कि चोरों में भी सबसे पापस चोर कोई है इस संसार में तो वो कौन है, कृष्ण है। वो यहाँ विशेष रूप से बरसाना में आते हैं राधा रानी को चुराने के लिए। और फिर राधा रानी की जो भावना उन्होंने देखी कि राधा रानी तो उस व्यक्ति को भी अपनी कृपा देने को तत्पर है जिसके पास पात्रता नहीं है, तो ऐसे ही कृष्ण ने दो चीजें श्रीमती राधा रानी की चुराई और कलयुग में किसके रूप में प्रकट हो गए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। कौन सी दो चीजें चुराई, श्रीमती राधा रानी की अंग कांति और दूसरा है श्रीमती राधा रानी का जो भाव है, हाँ दया का जो भाव है मूल, उसको चुराया। और कृष्ण जो काले थे, जो काला चांद था वो क्या बना, गोरा चांद। क्या बना, गोरा चांद। तो ऐसा कृष्ण काले थे लेकिन राधा रानी की अंग कांति को चुराया, वो गौर वर्ण के हो गए, और उनकी जो भावना है मूल है उसको भी चुराया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की विशेषता क्या है, पात्रा पात्र विचार नारी नारी स्थान स्थान। चैतन्य महाप्रभु नहीं देखते कि ये व्यक्ति योग्य है अयोग्य है, हर एक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति क्या करते चैतन्य महाप्रभु दे देते हैं। किस रूप में देते हैं, नाम के रूप में, हरे कृष्णा जोर से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तीन प्रेम धन है कृष्ण नाम, इस नाम धन के रूप में चैतन्य महाप्रभु जो अपनी कृपा है हर एक व्यक्ति को देते हैं, चाहे वो पात्र हो या अपात्र हो। तो ये विशेषता श्रीमती राधा रानी की है। तो ऐसा जो बरसाना है, बरसाना क्या है, ये वास्तव में यहाँ बरसती है। क्या बरसता है यहाँ, रस। किसकी वर्षा होती है यहाँ, बरसना सोचते ना बारिश जब बरसता है, हाँ तो बाद में क्या शब्द है, रस रसना बरसना, तो वैसी है बरसाना। तो यहाँ रस की वर्षा होती है, और ऐसे रस, कौन से रस की वर्षा होती है, माधुर्य रस की वर्षा होती है। भगवान के प्रति जो सर्वोच्च प्रेम की भावना है, सेवा की भावना है, वो उसकी यहाँ वर्षा होती है। और इस वर्षा से पूरा ब्रज क्या होता है, भर जाता है। इसलिए ये जो बरसाना है ये बहुत महत्वपूर्ण लीला स्थली है भगवान कृष्ण की और श्रीमती राधा रानी की। तो कौन सी दो लीला यहाँ प्रमुख है? अलग अलग वनों में अलग अलग लीलाएं प्रमुख है। तो 12 वन है वृंदावन में, सारे 12 वनों को मिलकर भी एक नाम क्या है, वृंदावन। 12 वनों में एक वन का नाम क्या है, वृंदावन। तो 12 वनों के समुच्चय को भी वृंदावन कहते हैं और 12 वनों के अंदर एक वन है जिसको क्या कहते हैं, वृंदावन कहते हैं। तो ये वन हो गए, फिर उपवन होते हैं, आदिवन होते हैं, ऐसे कई प्रकार के वन है। तो उसमें बरसाना एक आदिवन है। तो यहाँ बरसाना में दो लीलाएं प्रमुख है जो बाकी जगहों में इतनी अधिक नहीं पाई जाती है। एक है दान लीला और दूसरी है मान लीला। कौन सी दो लीलाएं है, जोर से, दान लीला, मान लीला। हाँ, बरसाना को याद रखना है, दो लीलाओं को याद रखना होगा। क्योंकि यहाँ तो ब्रज की जो राजकुमारी है वो श्रीमती राधा रानी है। तो यहाँ राजा कोई नहीं है, कृष्ण के क्या है, सेवक है। ब्रज में कृष्ण की चलती है क्या, नहीं है। एक बार तुलसीदास ब्रज में आए तो वो हक्का बक्का हो गए। उन्होंने कहा, अरे मैं अयोध्या जाता हूँ तो वहां सीताराम सीताराम चिल्लाते तो नहीं, क्या करते, गाते हैं। और जब वो द्वारका जाते तो वहां द्वारकाधीश सुश्री द्वारकाधीश बोलते हैं, लेकिन यहाँ आते तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते जोर से, जय श्री राधे। तो यहाँ तो केवल एक ही नाम चलता है, बाकी जगह दोनों नाम चलते हैं। तो यहाँ जो प्रमुखता है वो किसकी है, श्रीमती राधा रानी की। इसलिए वृंदावनेश्वरी कहा गया है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तो भगवान को परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, लेकिन राधा रानी को क्या कहते हैं, परम ईश्वर ईश्वरी। क्या बोलते हैं, परम ईश्वर ईश्वरी। जैसे हम कल एक राधा रानी का नाम सुना था, कौन सा नाम था जिसको याद है, मदन मोहन मोहिनी। तो वैसे यहाँ ये दो लीला प्रमुख रूप से होती है। और वास्तव में किसी को कृष्ण की अनुकंपा प्राप्त करना है तो उस व्यक्ति को श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद अमेरिका भी गए तो वहां जाकर उन्होंने कविता लिखी। उस कविता की शुरुआत में लिखा कि कृष्ण तब पुण्य हमें भार जब राधा रानी खुशी हमें। कभी जीवन सार्थक है या कोई सेवा सार्थक मानी जाएगी जब उसके द्वारा कौन खुश हो जाएंगी, राधा रानी। तो इसलिए प्रभुपाद के पिता हमेशा प्रार्थना करते थे, बल्कि उनकी माता की क्या इच्छा थी, माँ की क्या इच्छा थी, प्रभुपाद क्या बने, बैरिस्टर बने, लंदन गए बैरिस्टर बने। लेकिन पिता कहते थे नहीं, इसको गोल्डन बजाना आना चाहिए और ये राधा रानी का भवन बनना चाहिए। और कुछ बने या ना बने, इस संसार में बच्चा जन्म लेने से पहले माता पिता उसका भविष्य बनाए रखते हैं। इसको माँ कहती है इसको डॉक्टर बनाएंगे, पिता कहते हैं इसको इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन कोई नहीं कहता इसको भक्त बनाएंगे। कोई सोचता है कि बच्चे को क्या है, जन्म लेती है भक्त बनना चाहिए। तो ऐसे माता पिता प्रभुपाद कहते हैं, मैं बहुत भाग्यशाली था कि मेरे पिता का मुझे आश्रय मिला जो इतने महान भक्त थे राधा गोविंद के, जिनके कारण मुझे राधा कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य मिला। तो ऐसे श्री प्रभुपाद ने भी श्रीमती राधा रानी की जो कृपा है सब सब लोगों तक हाँ पहुंचाई है। तो ये जो माउंटेन है, जो पर्वत है, पहाड़ है, ये साक्षात कौन है, ब्रह्मा जी है। कौन है, तो ब्रह्म में तीन पहाड़ प्रमुख है, ये तीनों ने विष्णु और ब्रह्मा और शिव जी। तो जो नंदग्राम है वहां नंदेश्वर महादेव शिव जी उस पहाड़ के रूप में प्रकट हुए हैं। और यहाँ कौन प्रकट हो गए हैं? ब्रह्मा जी, क्योंकि पद्म पुराण में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में गिरते हैं और गिरते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे अपने चरणों का स्थान प्रदान कीजिए ताकि मैं आपकी दिव्य लीलाएं आपके गोप सखाओं के साथ, गोपिकाओं के साथ, गोचारण लीलाएं सब दर्शन कर सकूं। तो इसलिए भगवान कहते कि हे ब्रह्मा, तुम ब्रज में चले जाओ। ब्रज में जाकर एक पहाड़ बनाओ। तो यहाँ ब्रह्मा जी आके ये ब्रह्मगिरी, ब्रह्माचल इसे कहते हैं, इस पहाड़ के रूप में यहाँ निवास करते हैं। और ब्रह्मा के कितने मुख हैं? कितने मुख हैं ब्रह्मा के? चार। तो इस पहाड़ में चार चोटियां हैं, मानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ और भानगढ़। हाँ, भानगढ़ इस भानुगढ़ वृषभानु महाराज का नाम था ना, वृषभानु, जिसके कारण जहाँ ये राधा रानी का मंदिर है उसको भानुगढ़ कहते हैं या भानगढ़ कहते हैं। फिर पीछे जाओगे तो विलासगढ़ है, फिर मानगढ़ है, फिर दानगढ़ है। तो इस प्रकार से ये चार चोटियां हैं और इन पर विशेष विशेष लीलाएं श्रीमती राधा रानी अपने सखियों के संग करते थे। क्योंकि यहाँ राधा रानी का निवास था बरसाना में, तो इसके चार और आठ सखियों के गांव अष्ट सखी यहाँ निवास करते थे। ऊंचा गांव आगे, इधर पीछे जाओगे तो चित्सोली है, चित्रा सखी का गांव, जो चित्रा सखी किसने धुरंधर के चित्र बनाने हैं। तो एक बार कृष्ण कहते हैं, यशोदा माता सब मुझे काला कहते हैं, मुझे बताओ कि चित्रा सखी के पास जाओ, वो तुम्हारा ड्राइंग बना के दिखाएंगे, तुम कैसे हो, काले हो या गोरे हो। तो राजा रानी एक बार चित्रा सखी के गांव में जाती है, यहाँ दो मिनट दूरी पर है, तो यहाँ जाती है। और वहां जाते ही जब चित्रा सखी के पास पहुंची तो वहां उनको वेणुनाद सुनाई दिया, बांसुरी की आवाज। तो सुनाई देते ही उन्होंने क्या किया, उस अपना जो मन है उस बांसुरी वाले को दे दिया। फिर थोड़ी देर में क्या हो गया कि चित्रा सखी के रूम में ही एक ड्राइंग बना हुआ था, तो उसको उन्होंने अपना हृदय दे दिया। और फिर तीसरी बार उन्होंने क्या किया, राजा ने देखा कि कोई गोचारण करते हुए जा रहा है, उसको देखने मात्र से उन्होंने अपना शरीर भी उनको अर्पित किया। तो राजा ने कहते कि हे चित्रा सखी, देखो मैंने तीन अलग अलग व्यक्तियों को अपना क्या दिया है, एक को मन दे दिया, एक को हृदय दे दिया और एक को अपना शरीर दे दिया। हाँ, तो ये कहते कि ये अच्छा नहीं है, ये युवती के लिए तीन अलग अलग युवकों में अपनी तीन चीजें अर्पित करो। चित्रा सखी कहते नहीं, हाँ ये तीनों क्या है, एक है जो वेणुनाद कर रहे थे वो कौन थे, कृष्ण थे। और जिनका तुम ये चित्र देख रहे हो वो भी कृष्ण ही है, और जो गोचारण करते हुए जा रहे हैं वो भी कौन है, कृष्ण है। इस प्रकार से राधा रानी की खासियत क्या है, उनका मन, उनका वाणी, उनका चित्र हृदय आदि केवल कृष्ण के प्रति समर्पित है। इसी कारण से राधा रानी का एक नाम है कृष्णमयी। क्या नाम है? कृष्णमयी, कृष्ण जारा विफले बाहिरे। हाँ, जहां जहां नेत्र पड़े कहां कृष्ण स्फुरे, कि कृष्ण जिनके भीतर है और बाहर सब जगह वो कृष्ण को देखती है। तो ऐसी जो कोई है तो उनको कृष्णमयी कहा जाता है और वो श्रीमती राधा रानी है। तो ऐसे विशेष स्थान है जहाँ कृष्ण सुबह सुबह नंदगांव को छोड़कर पहले यहाँ आते थे। कहते हैं कि बरसाना को वास करे शिव शेष, मतलब बरसाना में रहने की इच्छा शिवजी या शेष ब्रह्मा आदि करते हैं। और इतना ही नहीं कि बरसाना में आने के लिए जो कृष्ण है या सखी का वेश धारण करते हैं, कौन सा वेश, सखियां गोपी बन के आते हैं। एक बार भगवान को बहुत मुश्किल हो रहा था राधा रानी को मिलने के लिए, तो उन्होंने किसका रूप धारण किया, एक गोपी का स्त्री का रूप धारण किया। और उस स्त्री का नाम भगवान ने स्वयं अपना नाम रखा श्यामा सखी। कौन सी सखी? श्यामा सखी। लेकिन बाद में कहा जाता है कि ऐसे श्यामा सखी जो डुप्लीकेट थी। हाँ, उन्होंने वस्त्र बिल्कुल स्त्रियों के पहन के आ गए थे सुबह सुबह, लेकिन बाद में राजा रानी ने उसको पकड़ लिया, जिसके कारण उनके कोल खुल गए। और इधर नीचे ही यहाँ से भी दिखाई देगा सातवीं खोल एक स्थान है जहाँ से सारे गोपी आए हैं अपना दूध दही मक्खन अपने बर्ते में लेते हुए गुजरते थे। सातवीं खोल का मतलब बिल्कुल ही नैरो पाथ पे बहुत ही छोटा रास्ता है, एक समय में एक ही व्यक्ति जा सकता है, उसमें से दो व्यक्ति उसमें चल नहीं सकते। वीर कृष्ण और उनके सखा का क्या करते थे, वहां बैठे रहते थे और ये जब सखिया और गोपिकाएं आते थे तो उसी सारा दूध दही माखन और टैक्स कलेक्ट करते थे, इतना तर्क करके रखना था उन्होंने। तो एक बार राजा रानी कहती है, क्योंकि राजा रानी बहुत साफ हृदय की है लेकिन उनके हृदय में कठोर लेडी है, क्या है उसका नाम, ललिता सती। क्या नाम है, ललिता, बहुत बोल्ड है, कृष्ण डर जाते हैं उसे। तो ललिता सती ने कहा कि हम उनको कल पकड़ के रखेंगे, सबको पकड़ेंगे। तो सारे गोपिकाओं को कहा कि आप अपना अपना स्थान ले लो, छाड़ो और छूट जाओ। और दो चार सती अपना भत्ता लेकर जा रहे थे, फिर कृष्ण मधुमंगल सुमल ये सारे सखागण आगे श्रीराम आगे और उन्होंने वो टैक्स मांगने लगे और उनको तंग करने लगे, दूध दही लेने लगे। तो उन्होंने कहा आगे दिखा के आगे देती आपको दूध दे। जैसे उन सखियों ने आवाज लगाई हजारों हजारों गोपियां झाड़ियों में से बाहर आ गए और ये थोड़े से थे उनको देखकर सारे कृष्ण उनकी सखागण कांपने लगे। कांपते क्या, ललिता सखी ने और बाकी सखियों ने मधुमंगल और सारे सखाओं को पकड़ा और इतना मारा कि उनके गाल ऐसे फूल गए। मधुमंगल और उनके सखाओं की सबकी चोटियां पेड़ पर बांध गई और बांध के वो चिल्ला रहे। तो मधुमंगल कहते हैं कि कृष्ण मुझे बचाओ, मेरी चोटी बांध दी है। कृष्ण कहते हैं मेरी भी बंधी हुई है, मैं खुद से छूट पा रहा हूँ, तुम्हें कैसे छोड़ू। हाँ तो फिर उसी समय राजा रानी विशाखा सखी और बाकी सखियां कृष्ण को पकड़ती है, पकड़ के पहले तो इतना मारती है भगवान कृष्ण को, उनके गाल वगैरह उड़ जाते हैं। और फिर दूसरा इतना ही नहीं, ऐसा दंड देने वाले थे कि फिर से उनकी हिम्मत ना हो, क्या आपके लिए टैक्स। तो ऐसा भगवान को क्या किया उन्होंने, गोपियों के ड्रेस पहनाए, हाँ सारे स्त्रियों के कपड़े कृष्ण को पहना दिए और उनके सर में क्या रख दिया, मक्खन का एक पूरा पटका रख दिया और कहा कि अभी चलो एक्सरसाइज करके चलो, अभी कृष्ण नहीं चले तो मार खानी पड़ेगी। तो भगवान मटका लेकर चलने लगे, कभी इधर देखते कभी उधर देखते हैं। राजा रानी और विशाखा सखी पीछे खड़े थे, तो इसी समय ललिता सखी आती है, दूर से पत्थर मार देती है, मटका फूट जाता है, सारा दही आगे क्या होता है कृष्ण पर गिर जाता है। तब से भगवान ने यहाँ वो जो दान लीला है, दही किस प्रकार की लीला है वो करना बंद किया। इस प्रकार से राधा कृष्ण दिव्य लीलाएं प्रकट करते थे जिसके द्वारा अपने भक्तों को क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। ये सारी लीलाएं क्यों है, दामोदर आश्रम में एक शब्द आता है आख्या पर्यंत निमर जानकर कि आपने ब्रजवासियों को आनंद के कुंड में क्या करना चाहते हैं, भगवान डुबाना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की बहुत सारी लीलाएं करते हैं जिसके द्वारा उनके जो भक्त है वो आनंदित होते हैं। तो ऐसे कृष्ण विशेष रूप से राजा रानी को मिलने के लिए यहाँ आया करते थे और एक बार बल्कि बहुत ऊंचा पहाड़ था और नंदग्राम भी वहां ऊंचा था, तो कृष्ण कभी कभी वहां से देखा करते थे, यहाँ दूर से राजा रानी को देखते थे और फिर यहाँ आते थे तो उनको कैसे, राजा रानी तो महल पे हुआ करते थे, वृषभानु महाराज का जो महल है ऊपर, तो कैसे उनको बाहर बुलाए, तो कृष्ण क्या करते थे मोर की आवाज निकालते थे। इसकी आवाज मोर की, अभी यहाँ इतने मोर आवाज करते हैं लेकिन राजा रानी को अपनी मोर की आवाज पहचान जाती है। जैसे कृष्ण की आवाज आती है तो राजा रानी निकलने पड़ती है अपने महल से बाहर, पीछे जाओगे आप थोड़ा चल के वहां मोर कुटी है, आप सब कई बार गए हो। तो मोर कुटी में पहले वहां ऐसा स्थान था, गुफा जैसा स्थान था, तो वहां कृष्ण आया करते थे। राजा रानी एक दिन कीर्तिका देवी उनकी जो माता है उनको कहती है कि मैं अभी चलती हूँ, जाती हो बाहर थोड़ा घूमने के लिए, तो राधा रानी चले जाती है बाहर, जाते तो कृष्ण महा होते हैं और कृष्ण महा मिलते हैं राधा रानी को, और कृष्ण एक एक जगह वर्णन आता है कृष्ण, राजा रानी देखते कि कृष्ण भी है और मोर भी है वहां, तो वो दोनों नाचते रहते हैं। राधा रानी बहुत आनंदित हो जाती है, राधा रानी कहते कृष्ण आपने इतना अच्छा डांस किया है, आपसे अच्छा उस मोर का था, भले उनकी प्रशंसा की लेकिन आपसे बेटर मोर थे, तो कृष्ण और अच्छे से नाचने लगते हैं, तो इतना सुंदर नाचने लगते हैं मोर से भी अधिक सुंदर कि राधा रानी आकृष्ट हो जाते हैं। राधा रानी भी क्या करते हैं, मोर बन के कृष्ण के साथ नाचने लगती है, तो वो मोर टूटी है जहां राधा कृष्ण क्या बने थे मोर बन के उन्होंने नृत्य किया था। तो राधा रानी एक दिन वहां जाते हैं मिलने, उस गुफा में राधा कृष्ण बैठते हैं, तो उसी समय ये कीर्तिता देवी महल से आती कि राधा रानी को बहुत समय हो गया, अभी कहां चले गए बुलाने के लिए, तो देखा उनके चरण चिन्ह पड़े हैं, उसके चिन्ह बाहर से है, तो उनके घोड़ते घोड़ते जाते तो उस गुफा के दरवाजे के पास जाती है, आवाज देती है ओ राधे के, तो राधा रानी देखती कि आने वाले कीर्तिता अंदर आ जाएगी तो हम पकड़े जाएंगे, तो राधा रानी जो वहां थे तो कृष्ण उनके गोद में अपना सर लेके ऐसे लेटे हुए थे, तो उसी समय कृष्ण क्या करते कीर्तिता को देखते ही वहां उनकी गोद में क्या बन जाते हैं मोर, और राधा रानी उनको सहलाती है, लेकिन बस आगे आगे इस मोर को साइड में रखते है, तो राधा रानी मोर को रखते है, इतना दुख होता है उनको, अभी कीर्तिता देवी के साथ बाहर अपने महल में वापस आती है। तो ऐसा ये जो बरसाना है ये भगवत लीलाओं से भरा हुआ है, पीछे एक गढ़ है मानगढ़, भगवान तो मुकुट धारण करते हैं लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनके चरणों में अपना मुकुट क्या करते हैं कृष्ण रखते हैं, कौन है वो राधा रानी, जो मान प्रकट करती है, जैसे कैकेयी ने मान प्रकट किया था याद है आपको, क्यों तो भगवान हुआ करता था, एक ऐसा रूप जिसमें कैकेयी ने एक बार भगवान ने दशरथ महाराज गए और उसकी सारी मन्नतें पूरी की। अभी यहाँ वैसे नहीं है, राधा रानी मान भी प्रकट करे तो ये किसके लिए नहीं कि मैं कितनी सर्वश्रेष्ठा हूं, मेरे आनंद के लिए कृष्ण को झुकना चाहिए मेरे सामने, ऐसा नहीं है, क्योंकि राधा रानी का जो भावना है क्या है कि उनके हर कार्य के द्वारा कृष्ण आनंदित हो, राधा रानी मान भी प्रकट करती है तो उससे सबसे अधिक आनंद किसे मिलता है महाराज में कृष्ण को मिलता है, इसलिए वो मान प्रकट करती है। तो ऐसे मानगढ़ में राधा रानी मान प्रकट करती है और कृष्ण उनको मनाते हैं और ये दिखाते हैं कि वास्तव में हे श्री राधिके आप सर्वश्रेष्ठा हो, इतना ऊंचा स्थान है, क्यों ऊंचा स्थान है क्योंकि राधा रानी भगवान की जो सेवा है इतनी अधिक मात्रा में करती है कि जिसकी कोई तुलना नहीं है, राधा रानी की कृष्ण के प्रति जो सेवा की भावना है, इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे आपको कृष्ण की सेवा करनी है, आप फूल लेके जा रहे हो कृष्ण के पास तो क्या करो फूल जाकर किसके हाथ में दे दो राधा रानी के हाथ में दे दो, तो राधा रानी कृष्ण को अर्पित करेगी, क्योंकि जो भी राधा रानी देगी कृष्ण को कृष्ण के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो क्या कर सके मना कर सके, इसलिए प्रभुपाद कहते सेफ विधि है, हाँ राधा रानी के हाथ में फ्लावर दे दो, राधा रानी के प्रो कृष्ण की सेवा करो, इसलिए ये हमारी परंपरा है। हमारे सारे जो गौड़ीय आचार्य हैं चैतन्य महाप्रभु से लेकर रूप गोस्वामी आदि, ये सब राधा रानी के दल में है और राधा रानी के दल में रहकर वो कृष्ण की सेवा करते हैं, इसलिए है किसी को कृष्ण की सेवा करनी है तो किसके माध्यम से करनी चाहिए राधा रानी के माध्यम से करनी चाहिए, तभी वास्तव में उसका जीवन धन्य है, हाँ क्योंकि राधा रानी और कृष्ण जैसे गोपियों के बारे में हम सुनते हैं, हाँ जब उनको सर दर्द हुआ था कृष्ण को तो अल्टीमेटली कौन सी दवाई काम में आ गई, गोपियों की शरण हुई, नारद ने कहा अरे गोपी कहो आपको डरने लग रहा है, कृष्ण ने कहा मेरा सर दर्द तभी रह सकता है जब मेरे भक्तों के चरण की धूली मुझे यहाँ लेप लगाओ चंदन के समान, तो वो रुक्मिणी आदि रानियों के पास जाते हैं, बुद्धों के पास जाते हैं, बहुत सारे भक्तों के पास नारद जाते हैं, लेकिन सब महाप्रतीक्ष भगवान को हमारे चरण की धूलि लगाए। नरक में हमें जाना है, ये महान पाप है, लेकिन वो वृंदावन में जाते हैं और वहां गोपी प्राय कृष्ण के विरह में राधा रानी के साथ यमुना के तट पर थे और वहां ये नारद मुनि गए और कहते आप जानते हैं कृष्ण का सर्जन हो रहा द्वारका में। हाँ, तो उन्होंने कहा उनके लिए दवाई है कि आपके चरण कमल की धूलि। तो गोपी कह रहे थे कितनी चरण धूलि चाहिए तुम्हें नारद। हाँ, गोपी कहा बहुत दवाई यमुना में आपने पाप हुए हैं और आपकी यमुना के रज में क्या करने लगी नृत्य करने लगी। नारद भोली आदि के आए भरने के लिए रज। हाँ, नारद ने तो कुछ रज लेके गए भगवान के पास, वो डरे नहीं। इसको कहते सर्वोच्च सेवा आश्लेषवा पादरता पिलस्तवा। चैतन्य महापुरुष शिक्षाशास्त्र में कहते हैं राजा रानी के भाव में कि हे कृष्णा आप मुझे आलिंगन करो या नाक मारकर दूर फेंक दो, लेकिन फिर भी आप मेरे क्या बने रहेंगे प्राणनाथ बने रहेंगे। ये वास्तव में राजा रानी की भावना है। तो कई बार भक्ति में हम आते हैं थोड़ा सा कुछ हो जाता है समझ आती है तो सबसे पहले किसको दूर फेंक देते हैं जब माला को, किसको बुखार है, आज जन्म में चल रहा है बहुत बुखार है, सर दर्द हो रहा है, घर में टेंशन चल रहा है, जब माला ब्लॉक कर देंगे। जब माला है वो क्या है कृष्ण से आलिंगन है। तो मतलब राधा रानी कहते कि आप मुझे आलिंगन करो या मुझे लात मार कर प्रताड़ित करके दूर फेंक दो, लेकिन आप मेरे क्या रहेंगे हमेशा प्राणना सेवा के विषय रहेंगे, आपकी सेवा किसी भी स्थिति में मैं छोड़ूंगी नहीं। यही प्रस्ताव में आने का लाभ है कि यहाँ आकर उनसे वो शक्ति मांगनी चाहिए कि ये राधिका ऐसी कृपा करो कि हर स्थिति में जीवन के हर परिस्थिति में हम क्या कर सके आपका जो नाम है आपकी सेवा है कृष्ण की सेवा और कृष्ण का नाम उसमें हम सदैव क्या रहे निमग्न रहे कभी भी विचलित ना हो। आप देखो पांडवों के जीवन में कितना कष्ट था लेकिन वो कभी विचलित हुए कृष्ण की सेवा से नहीं। इसलिए भगवान द्वारका छोड़कर हस्तिनापुर में आके रहते थे 6-6 महीना। तो इसलिए ये जो भावना है श्रीमती राधा रानी की है और ऐसी भावना क्या है सर्वोच्च भावना है जिसके लिए हमें श्रीमती राधा रानी से सदैव प्रार्थना करनी चाहिए। और वास्तव में राधा रानी की कृपा कैसे प्राप्त कर सकता है व्यक्ति इससे प्राप्त नहीं होगी। हाँ, राधे राधे में क्या है वो रटो कृष्णा है क्या है। हाँ, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी इससे नहीं आएंगे बिहारी उसके लिए कुछ आपको करना पड़ेगा। इतना सस्ते नहीं है कृष्ण। हाँ, प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में लिखते हैं कि एक नाई था और वो अपने नाई का काम करते करते राधे राधे बोलता रहता था। किसी ने घर गया कहते क्या है राधे राधे बोल रहे हो, कहते मेरी पत्नी घर नहीं ना उसका नाम राधे राधे। तो ऐसे नहीं चलेगा। राधा रानी की कृपा के लिए दो चीजें करनी पड़ेगी और वो दो चीजें क्या है, एक है नाम सेवा और एक है वैष्णव या गुरु की सेवा। इसलिए गुरु को क्या कहते हैं श्री गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं श्री गुरु। श्री कौन है श्रीमती राधा रानी। हाँ, तो यदि व्यक्ति जो आध्यात्मिक गुरु वैष्णव है उनकी सेवा में लगा रहता है और नाम की सेवा करता है हरे नाम को उच्चारण करता रहता है तो उसके लिए श्रीमती राधा रानी दौड़ कर आती है तब राधा रानी को कृपा प्राप्त कर सकता है। आप जानते हैं ऐसे दो जोड़े इसके उदाहरण है। हाँ, एक है रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा को के तट पर बैठते थे और क्या करते थे जप करते थे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी निरंतर जप करते रहते थे। तो उस समय 500 साल पहले कोई कुटिया नहीं थी वहां। अभी लोग कहते वो नारायण भट्ट गोस्वामी के ये जो विग्रह ऊपर हम दर्शन करते हैं लाडली लाल या लाडली महाराज कहते हैं, यहाँ लाडली महाराज की चलती है राजा राजू की, तो इसलिए वो विग्रह नारायण भट्ट गोस्वामी को प्राप्त हुए थे। ये नारायण भट्ट गोस्वामी गोस्वामियों के बाद बहुत बड़े आचार्य थे हमारे संप्रदाय में, जिन्होंने वृंदावन में हजारों लीलाएं स्थलियां ढूंढी और विशेष रूप से किशोरी का जो राधा रानी का जो विग्रह है उनको प्राप्त हुआ था एक वृंद में और जहाँ यहाँ इंस्टॉल किया गया श्रीमती राधा रानी ने स्वयं उनको कहा था। और ऐसे नारायण भट्ट गोस्वामी का समाधि यहाँ एक ललिता सखी का गाँव है मुक्षा गाँव वहाँ है, तो ये उनकी देन है एक प्रकार से। और यहाँ आश्रम बनाते हैं और राधा जी का क्या करते हैं जय घोष करते हैं उनका गुणगान करते हैं। जय जय श्री राधे कृष्णा श्रीमती राधा रानी के बरसदा के श्री प्रभुपाद के जय गौर प्रणते हरे कृष्णा। हाँ किसी का कोई प्रश्न है तो वो सकते हैं या मैं प्रश्न पूछूं गर्व से।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे, इसमें भागवत की 11वें स्तर का वर्णन आता है। कलयुग के जो बुद्धिमान लोग होंगे वो इस युग में भगवान की आराधना करेंगे संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। ये महत्वपूर्ण है, नाम संकीर्तन अध्यात्म गुरु के मार्गदर्शन में।
भाव हो और कृष्ण ने ऐसे कई जगहों में भगवान को बनाया।
तो भगवान ने कई स्थानों में छोटे छोटे या कुंड या फिर कुएं बनाए हैं अपने भक्तों के लिए, जहाँ खारा पानी है लेकिन भक्तों के लिए मीठे पानी की उन्होंने व्यवस्था की। मैं भूल गया किसी स्थान में गया तो वहाँ भी ऐसे था जब भगवान ने भी मीठे पानी की व्यवस्था की।
मीठा पानी की व्यवस्था की।
तो प्रभु जी कह रहे हैं कि जो भक्तों के लिए मीठे पानी की व्यवस्था है, हम सब भक्त है इसलिए हमें खारा लग रहा है। ओरिजिनल उसका टेस्ट कैसा है? अमृत के समान है। जैसे मैंने कल कहा था ब्रज में सब जगह आपको कमल नजर आएंगे लेकिन हमें नजर आते हैं। एक बार एक गुरु जी आए हैं उनके पीछे उनका शिष्य उनका सम्मान कुछ कहते चल रहा था। देखा गुरु जी ने जैसे ब्रज में प्रवेश किया गुरु जी नाचते हुए जा रहे थे। हाँ तो और ऐसे कूद रहे थे। अभी शिष्य ने देखा अरे गुरु जी को क्या हो गया, तो नाचते इतने आनंद में है और शिष्य भी कूद रहा था। गुरु जी कहते ध्यान से पाँव में पड़ना से हर स्थान में कमल है, मैं कमल को बचा रहा हूँ और कमल की जगह शिष्य को गोबर का ढेर चल रहा था। अपने आप को बचाते हुए जा रहा था और गुरु जी अपने आप को किससे बचा रहे थे कि कमल के ऊपर ना पाओ पड़े। ये उनका लक्ष्य। कैसे ब्रज में बहुत सारे देवी गाथाएं हैं भक्तों की, तो वैसे ही है मेरे को मीठा पानी है लेकिन जैसे हमारे जुबान में ज्यादा मीठा लगता है खारा। तो ब्रज अद्भुत है, जो ब्रज सरलता से रवि नहीं होगा, ब्रज रवि होगा यदि कोई गुरु कोई व्यक्ति अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा में क्या है शत प्रतिशत नियुक्त है। हाँ क्योंकि आध्यात्मिक गुरु ही क्या करते हैं धाम प्रकट कराते हैं शिष्य के लिए। हरे कृष्णा।
वो अपने पुत्र की या किसी की इतनी चिंता नहीं करते हैं
किसकी चिंता करते हैं? कृष्ण की।
ये गोपिकाएं माखन आदि बना चुकी है तो भी इस भावना से कौन आ जाए घर उठाने के लिए? कृष्ण। यानी कि मेरे पति के लिए, बच्चों के लिए, उनके लिए नहीं, केवल कृष्ण के लिए। इसी कारण से ब्रह्म बहुत बड़ा स्थान है और यहाँ सेवा भाव क्या है? प्रमुख है। और सेवा भाव स्वाभाविक है, यहाँ सेवा करने की भावना है ब्रज में। इसलिए भैंस है जो वृंदावन है, इसलिए वृंदावन के जो निवासी है कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में माधवेन्द्र का वर्णन करते हुए कृष्णदास कविराज कहते हैं, तो गोपाल सहज प्रति ब्रजवासी प्रति, कि गोपाल जो कृष्ण है उनका प्रेम ब्रजवासियों से स्वाभाविक है, वैसे ही ब्रजवासियों का प्रेम कृष्ण से क्या है? स्वाभाविक है। इसलिए कभी भी हमें अनादर नहीं करना चाहिए ब्रजवासियों को। हम वृंदावन आते हैं तो किसी का अनादर या कोई अपशब्द आदि नहीं बोलने चाहिए। मैं हमेशा जो ग्रुप्स आते हैं उनको बोलता हूँ, वृंदावन आओगे तो 3 B से सावधान रहना, कौन से B? ब्रजवासी, बाबाजी एंड बंदर, तीनों से ना हो मैत्री रखनी है, उनसे बिल्कुल डिस्टेंस। एक होता है ना एक रिस्पेक्टेड रिलेशन या डिस्टेंस मेंटेन करे, बंदरों से ज्यादा प्रयोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बाबा जी बहुत सारे साधु महात्मा उच्चारण करते हैं, उनसे भी ज्यादा नजदीक जाने का प्रयास नहीं। माता को सम्मान करो और अपना व्रत निकलो। और ब्रजवासी भी है तो आपको ऐसे खींच लेंगे आपका कपड़े भी और आपको भी, यदि कुछ भी बोले रिक्शा वाले ने आपको बात बोला कभी भी क्या है उनसे प्रेम से व्यवहार होना चाहिए। हाँ तो ब्रज में हम आते हैं तो तीन दिन से सावधान रहना चाहिए, उनसे म्यूचुअल रिलेशन रहना चाहिए। इनका प्रश्न है हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? तो हरे कृष्ण का मतलब यही है कि हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं। हरे का मतलब क्या है? हरा से हरे आया श्रीमती राधा रानी, और कृष्ण में जो सबको आकर्षित करने वाले हैं दर्शति इति कृष्ण, और राम कौन है जो आनंद देने वाले हैं। तो वास्तव में राधा रानी के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं कि राधा रानी हमें किसकी सेवा में लगाओ या किसकी सेवा प्रदान करो, कृष्ण की सेवा प्रदान करो। इस महामंत्र का अर्थ है, ये हमारी प्रार्थना है भगवान के प्रति और श्रीमती राधा रानी के प्रति भी, दोनों के प्रति। तो इसके लिए आपको भक्ति और ठाकुर का जीवन करना चाहिए। भक्ति विपुल ठाकुर मैजिस्ट्रेट थे लेकिन वो 100% भगवान कृष्ण की सेवा में थे, तो वो भावना हमें विकसित करनी होगी भक्तों के संग में। और सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट सेवा आ जाए तो गुरु की कौन सी है? चांति हरे कृष्ण महामंत्र सबसे पहले उन्होंने सेवा दी है। तो वो यदि हम सही से करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो जो भावना है पूर्ण सेवा का भावना धीरे धीरे हमारे हृदय में क्या होगा? विकसित होगा और हमसे सेवा करता है। इसलिए गृहस्थ के लिए महाभारत ने दिनचर्या दी है। महाभारत में कहा गया है कि गृहस्थ तभी सुखी रह सकता है जब इस दिनचर्या का पालन करता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह उसे क्या करना चाहिए? अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए पर्सनल साधना करनी चाहिए, हरे नाम भगवत सेवा आदि। और दिन में उसको धन अर्जन के लिए जाना चाहिए, धन अर्जन करना चाहिए किसके लिए? परिवार का पालन पोषण करना, ये भावना भक्ति में ठाकुर करते हैं। पारिवारिक धर्म जो है वो मेरे नहीं है, मैं उनका गुलाम हूँ, ये सारे कृष्ण के हैं, उनकी सेवाओं में लगाओ इसलिए उनका भरण पोषण कर रहा हूं। और शाम का समय उसको यूज करना चाहिए प्रचार आदि कार्य, पूरे परिवार को
कृष्णा भक्ति में लगाने के लिए ऐसे एक दिनचर्या होना चाहिए। सुबह का समय पर्सनल दिन का धन अर्जन करते हैं तो निश्चित रूप से उसको किसकी सेवा में यूज करना चाहिए? भगवान की सेवा, क्योंकि जहाँ धन वहाँ मन, और वो फल है हमारा। एक तो है समय भी लगा सकते हैं और दूसरा है धन से भी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं या गुरु की सेवा कर सकते हैं। और शाम का समय परिवार के लिए, मॉल में जाने के लिए नहीं, परिवार के क्या चंपल जाए, सत्संग में जाए, उनके साथ बैठकर भजन करें, कीर्तन करें, उनको सिखाए, इस चीज के लिए। तो ऐसी दिनचर्या होगी तो गृहस्थ अपने आप में सुखी रह सकता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी क्या है 500 सुबह उठते ही रात को नींद आए तब तक चलता रहता है उसका। तो कहाँ सूर्य भजन करता है, कहाँ ये भावना मेंटेन होती है, क्योंकि सुबह अच्छे से नाम जप करोगे तो आपका मन, हाँ जैसे हरिनाम जब सुबह का क्या है अम्ब्रेला है, कभी मन हरिनाम अम्ब्रेला है, बारिश आ गया अम्ब्रेला लेकर आप चलो आप हृदय में ले, वैसे नाम हरिनाम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ 7 बजे तक 16 माना करो और फिर निकलो बाहर। एक प्रोटेक्टिव शील्ड जिससे आपके ऊपर असत संग का प्रभाव नहीं होगा, बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? बेटर लोकेशन चाहिए, उसको करना होगा और वो संभव है भक्तों के संति में। भक्तों के संति में सब कुछ संभव है, हाँ भक्तों के संति में। सोचो ये सूर्य चलना कितना कठिन है कि नहीं? लेकिन भक्तों के संग में हम हंसते हंसते चलते हैं सब लोग, तो भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। इसलिए राजाराम से ये मांगना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो मुझे जीवन के आगे तक कौन सा संग प्रदान करो? भक्तों का संग, क्योंकि भक्तों के संग में रहोगे तो आपसे सारी चीजें होने लगेगी, सारी सेवाएं आप कर सकोगे, हरे नाम कर सकोगे, हाँ सब संभव हो सकता है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जोर से जय जय श्री राधे श्याम।
क्या क्वेश्चन नाम क्या हो गया?
राधारानी हमेशा सीखने के लिए रोज सीखती है, विद्यार्थी उनका एक नाम है।
हमेशा वो स्टूडेंट ही है। किस कौन किसकी सेवा सीखने के लिए है? कृष्ण की। तो हमें भी सदैव तत्पर रहना चाहिए सीखने के लिए, लेकिन भक्तों के संग और प्रयास करें पूर्ण भक्तों का संग करें। भक्तों का संग मतलब क्या है? उसे श्रवण करें, सीखें, और जो भी सेवाएं हमें प्राप्त होती है उनको हम करें बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी रिजर्वेशन नहीं रखता है अपने हृदय। तब नहीं, लेकिन धीरे धीरे हमें किसी भावना को त्यागना है। आई वॉन्ट कृष्णा वॉन्ट या गुरु क्या चाहते हैं, कृष्ण क्या चाहते हैं, गुरु क्या चाहते हैं, वो हमें देखना है। हरे कृष्णा
श्रीमदान के
आगे हमें क्या करना है? पूछो प्रभु जी को अनाउंस करने के लिए।